हरे हरि हरि जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यो श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध का वर्णन है। इसका कल हम दसवें अध्याय तक पाठ किया था। दसवें अध्याय के पूरा नहीं किया, वहाँ से ही मैं पढ़ने शुरू कर रहा हूँ। जैसे इसमें नारद मुनि के साथ नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिए थे, इसका वर्णन हुआ। तो शाप देने के पश्चात इसके बाद नारद ऋषि अपने धाम नारायण आश्रम में लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए। नल अर्थात नल कुबेर और मणिग्रीव दो वृक्ष में, बल्कि वो वृक्ष कहाँ था, नंद महाराज के आंगन में। जमल अर्जुन, जमल मतलब दो, और अर्जुन दो अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिया और दो वृक्ष के रूप में खड़ा रहा वहाँ। और इन दोनों देवताओं पर नारद की अहितु की कृपा हुई थी जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलूख में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खरे जमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्तों नारद की वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलूक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। यही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची तो ही दोनों वृक्ष धड़ तथा शाखाओं समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। इस भौतिक जगत का प्रकाश कभी कभी प्रकाश होता है और कभी अप्रकट हो जाता है। अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ये जगत अव्यक्त है, मतलब उसका प्रकाश नहीं है और बाद में उसका प्रकाश होता है। वक्त मध्यानी भारत, बीच में प्रकाश होता है और अव्यक्तान निधनान नेव, और उसके पश्चात फिर अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त कब होता है इस जगत? जब भगवान इस जगत के प्रति या माया के प्रति दृष्टिपात करते हैं। भगवान के दृष्टिपात के कारण इस जगत प्रकट होता है, जगत का प्रकाश होता है। और जब भगवान इस जगत से अपनी दृष्टि फिरा लेते हैं तो जगत अप्रकाश हो जाता है। इसलिए उन्होंने कह रहे हैं जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान श्री विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज और तामस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भलीभांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। ये उन्होंने वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अंतर्जामी रूप में परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान हैं और हर जीव के मन में और शरीर में क्या हो रहा है भगवान सब कुछ जानते हैं। तो कभी भगवान से कुछ छिपाने का कोशिश ना करना। हमारे मन के बाद जो हम भी नहीं जानते हैं भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान के समक्ष बिल्कुल एकदम निर्मल होना चाहिए, रहना चाहिए। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। परमात्मा भगवान का तीन रूप से प्रकाश होता है, एक ब्रह्म परमात्मा और भगवान। उनका स्वरूप में कौन है वो? स्वरूप में क्या ब्रह्म है? नहीं, स्वरूप में वो है भगवान। स्वरूप में क्या परमात्मा है? नहीं, परमात्मा भगवान जो हर जीव के हृदय में विराज कर रहे हैं वो है उनका परमात्मा रूप का प्रकाश। परमात्मा रूप में ऐसे तो ब्रह्म रूप में भगवान, ब्रह्म जो है वो निराकार है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म है ज्योति, ज्योति का कोई आकार होता है? नहीं, बल्कि परमात्मा रूप में भगवान जो विराजमान है हृदय में उस रूप में भगवान साकार है, और बल्कि भगवान निष्क्रिय है। परमात्मा रूप में भगवान क्रिया नहीं कर रहे, सिर्फ उपद्रष्टा अनुमानता के रूप में विराज करते। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब दर्शन, सब कुछ दर्शन करने वाला। हर जीव का हृदय में रहकर भगवान उसका सारे कार्यकलाप दर्शन करते हैं। और अनुमानता, भगवान उसकी मन कामनाएं पूर्ण करते हैं, अनुमोदन करते हैं। कौन सी कामना पूरा होगा और कौन सी कामना सफल नहीं होगा इसका विचार भगवान करते हैं। जीव कामना करते हैं, चाहते हैं, वासना होता है उसका, बल्कि भगवान उसको नियंत्रण करने वाला है, नियम नियंत्रण नियंता उसको, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आदमी चाहता है बल्कि उसको देने वाला है भगवान। हमारा सब कामना पूर्ण होता है नहीं, जब नहीं होता है तो हमें क्या समझना चाहिए, भगवान नहीं चाह, और जब होता है कि भगवान का कृपा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो यहां और एक तत्व का यह हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, आत्मा और परमात्मा। कभी कोई गलत विचार होता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा अगर परमात्मा होता तो परमात्मा का वर्णन क्यों हो रहा है, और ये तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा है आत्मा और परम आत्मा है परम, परम का मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे परम। हम हैं जीवात्मा या आत्मा, और भगवान है परम आत्मा। हम हैं पुरुष, भगवान है परम पुरुष। हम हैं अपने शरीर का या अपने घर का ईश्वर, और भगवान है परम ईश्वर, सब कुछ के ईश्वर। तो परमात्मा के रूप में भगवान, हाँ, जैसे इसका वर्णन हुआ है, एक एक वृक्ष में, कौन से वृक्ष में, शरीर रूपी वृक्ष में दो पंछी हैं, दो पंछियां हैं, एक फल खाने वाला पंछी और दूसरा पंछी उस फल खाने वाला पंछी को देखने वाला, देख रहे हैं। तो फल जो खा रहा है वो कौन सी पंछी है, जीवात्मा। जीवात्मा अपना कार्य का फल भोग रहा है, शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा है, मन के द्वारा जो कार्य हो रहा है, वो सारे कार्य का फल कौन खा रहा है, कौन भोग कर रहा है, जीवात्मा। और परमात्मा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे वो फल खाते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं, उस कार्य के अनुसार उसको फल दे रहे हैं, वो फल नहीं खा रहे हैं। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्य के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तु के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपने अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप होते नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जीव का दो ये होता है, आत्मा और शरीर, दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि वो है आत्मा, और जो शरीर धारण करता है वो किससे बनवाया गया है, ये शरीर भौतिक, आत्मा है चिन्मय और शरीर है भौतिक। आत्मा रहने के कारण शरीर में चेतना रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर जो पंचभूत से बना हुआ, भूत का मतलब है जड़, भौतिक जगत के हर वस्तु जड़ है, अचेतन है। बल्कि हम में जो चेतना है, हमारा शरीर में जो जीवन है, इसका कारण क्या है? यह सरल विचार है, आत्मा के रहने के कारण शरीर में जीवन है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो शरीर जो जड़ पदार्थ से बना हुआ है वो जड़ बन जाता है। तो इसलिए हम जीव के लिए शरीर और शरीरी में अंतर है, शरीर और आत्मा में अंतर है। बल्कि भगवान का शरीर क्या भौतिक वस्तु से बना है? भगवान का शरीर क्या पंचभूत से बना, मिट्टी पानी अग्नि से बना? नहीं, भगवान का शरीर चिन्मय है। इसलिए भगवान और भगवान का शरीर में कोई अंतर नहीं। अपना दिव्य शरीर लेके, चिन्मय शरीर लेके भगवान आते हैं यहाँ। जब यहाँ वे आते हैं तो उनके वो शरीर लेके आते हैं। हम जैसे उन्होंने भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करते हैं, और ये भौतिक जगत के जितने सारे वस्तुएं हैं वो सारे गुण के अधीन है। प्रकृति का तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस भौतिक जगत के सारे वस्तु इस तीन गुण के अधीन है। तो हम जब शरीर धारण करते हैं तो भौतिक शरीर के कारण हम भी भौतिक जगत के गुणों के अधीनस्थ हो जाते हैं। बल्कि भगवान को ऐसा नहीं, भगवान कभी भी गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसका एक दृष्टांत मैं पहले कई बार दे चुका हूं। वो दृष्टांत किसको याद है? कारागार और राजा। हाँ बताओ सीताराम। हाँ, अगर राजा कारागार में गया तो कारागार का राजा क्या कैदी बन जाएगा? कारागार का जो कानून है उसको वश में राजा कभी आएंगे नहीं। राजा हर समय कारागार के अधीश्वर ही रहेंगे, कारागार के अधीन कभी नहीं बनेंगे। तो वैसे ही भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान कभी भी भौतिक जगत के या प्रकृति के अधीन नहीं बनते हैं। भगवान हर स्थिति में माया के अधीश्वर ही रहते हैं, मायाधीश रहते हैं, कभी मायाधीन नहीं होते। किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपने अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। ये भौतिक जगत का सृष्टि किससे हुआ है? ब्रह्म से हुआ है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति से ही इस भौतिक जगत का सृष्टि हुआ है। तो आध्यात्मिक शक्ति का नाम क्या है? ब्रह्म। सर्वं खलिदं ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये जो दृश्य जगत जो है, जो कुछ है यहाँ, सब ब्रह्म का ही परिणाम है, ब्रह्म का विकार है। ब्रह्म ही महतत्व प्रधान से गुण के द्वारा प्रभावित होकर इस भौतिक जगत का रचना की है। बल्कि भगवान ब्रह्म नहीं है, भगवान है परब्रह्म, ब्रह्म का भी अधीश्वर। ब्रह्म है शक्ति और भगवान है शक्तिमान। तो शक्ति और शक्तिमान में अंतर है। शक्ति निराकार हो सकता है, बल्कि शक्तिमान कभी निराकार होता है? हाँ, ब्रह्म निराकार है, शक्ति के रूप में ब्रह्म निराकार है। बल्कि ब्रह्म के जो स्रोत है वो है साकार भगवान। तो अब निराकार साकार का अंतर समझ गए सब लोग? हाँ, कोई शक तो नहीं है? हाँ, तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि भगवान निराकार है, ब्रह्म निराकार है, बल्कि भगवान निराकार है। इस विषय में मैं बहुत स्ट्रेस जोड़ देता हूं, क्योंकि मैं देखा यहां ये एक गलत भावना का बहुत ही प्रभाव है यहां, तो इसलिए मैं बार बार इसको कीप ऑन हैमरिंग इट। हे भगवान वसुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीर में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या अपना हाथ के अंगली पर एक पर्वत उठा सकता है? जो 200-300 किलो उठा लेता है उसके ओलंपिक चैंपियन बन जाता है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान व्यक्ति क्या कौन है? 300 किलो उठा लिया है ऐसे। वेट लिफ्टिंग। कुछ दिन पहले बीजिंग में ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक का वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड क्या था? वैसा ही होगा, करीब 300 किलो। बल्कि एक पर्वत का वजन कितना होगा? एक पर्वत का वजन शायद 300,000 टन होगा। और वो ऐसे हाथ में, एक बच्चे के रूप में भगवान जब लीला कर रहे थे, हाथ में उठा लिया। तो भगवान के लिए ये क्या असंभव है? ये जो भौतिक जगत में सब कुछ जो नीचे गिरता है, क्यों गिरता है नीचे? Why things are settling at the bottom, setting, falling down? क्यों गिरा है? माध्याकर्षण शक्ति। ये माध्याकर्षण शक्ति कौन सृष्टि किया? भगवान ने किया है। तो भगवान जो शक्ति को शक्ति तैयार किए हैं, उसको भगवान ऑल्टर कर सकते हैं। तो हाथ में अगर उठा लिया, वहां से माध्याकर्षण शक्ति को निकाल दिया, तो क्या होगा भगवान के लिए? तो ये हमें समझना, सही रूप से समझना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान, उनके लिए सब कुछ संभव। बल्कि हम सब प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए प्रकृति के जो सारे शक्ति हैं, गुण हैं, हम सब उसके अधीन है। बल्कि भगवान मायाधीश है, प्रकृति के ईश्वर है। भगवान जो कुछ चाहते हैं कर सकते हैं। कारागार का द्वार ऐसे बंद रहता है, राजा अगर आकर बोलेगा कि ये दरवाजा खोल दो, खोल सकते हैं? राजा अगर आदेश दिया तो कौन उसको बंद रखेगा? वो राजा को आदेश नहीं पालन करेगा तो राजा का आदमी उसको कुतल कर देगा, है ना? तो राजा ऐसे अगर बोले दरवाजा खोल दो, और बोला जो निकलना चाहते हैं कारागार से निकल जाओ, राजा कर सकते हैं? तो देखो कि ऐसी इतनी आसानी से भगवान हमसे, हम सबको इस भौतिक जगत से उद्धार कर सकते हैं। बल्कि हमारे लिए क्या करना चाहिए? भगवान को शरण। जब हम भगवान को शरण लेते हैं, तब हम भी प्रकृति के वश में नहीं रहते। हम भी प्रकृति से निकल जाते हैं, प्रकृति के वश में नहीं रहते। जैसे जो राजा के जो कर्मचारी हैं जो कारागार में काम कर रहे हैं वो क्या कैदी है, उसको क्या सजा मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो राजा के आदमी है। तो वैसे जब हम भगवान के आदमी बन जाते हैं तो हम प्रकृति के अधीन नहीं रहते हैं, परंतु हम प्रकृति को मदद देते हैं प्रकृति के कार्य संपादन के करने के लिए, और प्रकृति भी हमें मदद देती है भगवान की सेवा करने की। तो अब बताओ क्या करना चाहिए मित्तल, क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेकर रहना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए। बहुत अच्छा, शरण में आ गए हो सब राघव पंडित, बहुत अच्छा। उज्जैन में सबसे पहले भगवान के शरण में आने वाला है राघव पंडित। हम जब आए थे बस वो एकदम सीधा चले आए हमारे साथ। आप परम भगवान जीवों के, अच्छा, ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। भगवान जैसे कार्य करते हैं वैसा कार्य करना और किसी के लिए संभव नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो हमें क्या पूछना है? आप थोड़ा एक पर्वत तो उठाना उठाने का जरूरत नहीं है, ये टेबल को आपको हाथ पर उठा लीजिए और 7 दिन ऐसे, 7 दिन भी नहीं 7 घंटा ऐसे आप उंगली पर बैलेंस करके रखिए, तभी उसको पता चल जाएगा कि कौन असल भगवान है कौन नकली भगवान है। ऐसे नकली भगवान को पहचानना कठिन काम नहीं, बल्कि मूर्ख लोग ऐसे कोई फालतू आदमी को भगवान कहकर समझते सोचते। आप परम ईश्वर जीवों के जन्म मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और अपने सभी अंश से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांतिदाता तथा यदु वंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं, इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और ये उन्हीं के कृपा हैं कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण जो यशोदा द्वारा उखल से बधे गए थे हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ज्ञान था, ये मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्भित स्थिति में उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित किया है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में ही प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार की दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अतः हे नल कुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण तुम इस जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए, और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वही पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? बद्ध जीव कहाँ था? बद्ध जीव आध्यात्मिक जगत में था, आध्यात्मिक जगत में था, बल्कि वहां सोए हुए थे, चेतना नहीं था, अचेतन, क्योंकि चूंकि उसका जग चेतना शुद्ध नहीं है, अशुद्ध होने के कारण भगवान के पास जाने के पश्चात भी वो अचेतन रहता है। जैसे अंधा, वो क्या सूरज की किरण को देख सकते हैं? चाहे वो सूर्य लोक में भी गए, सूर्य मंडल में भी गए, तो भी वो सूरज का किरण नहीं देख पाए। सूरज का किरण देखने के लिए किसका जरूरत है? आंखें का जरूरत है। जो अंधा है वो नहीं देख सकेंगे। वैसे ही जब तक हमारा चेतना भौतिक कलमश से मुक्त होकर उसका विशुद्धता आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक दर्शन नहीं हो सकता। चाहे वो भगवान के पास भी गए, तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है? नींद। मृत्यु के पश्चात अंधतमिश्र लोक में गमन होता है, मतलब एकदम अंधेरा में रहता है। मतलब अंधेरा में का मतलब क्या है? नींद जैसे। तो मृत्यु भी एक प्रकार का निद्रा है, वो निद्रा में रहता है। तो भौतिक जगत जब ध्वंस हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, मतलब उस समय क्या होता है? भगवान के दृष्टिपात, भगवान निकल लेते हैं, विड्रॉज। भगवान के दृष्टिपात के कारण जीव इस भौतिक जगत में आया था। भगवान जब अपना दृष्टिपात को संवरण कर लेते हैं, तो सारे जीव भगवान के पास ही चले जाते हैं, बल्कि निद्रा जैसे स्थिति में रहता, क्योंकि उसका चेतना इस तरफ है, उस तरफ देखने का मौका उसको नहीं मिलता। तो फिर जब सृष्टि शुरू होता है, तब फिर वो लोग यहां आ जाते हैं। ठीक है, चलो।
तो आपने बताया था कि ब्रह्म ये
सृष्टि का मूल कारण
है, तो लेकिन ब्रह्म तो स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन भौतिक जगत तो मटेरियल एनर्जी है, तो फिर ब्रह्म से कैसा
मटेरियल ये है? बल्कि ब्रह्म का ही परिणाम है महत्तत्व, जो भौतिक जगत का सृष्टि का मूल उपादान है। तो उस मूल उपादान से इस भौतिक जगत का गुण की प्रभाव से वस्तुएं और शरीरों का प्रकाश होता है। जैसे ऐसा तुम सोच सकते हो, राजा ने कारागार बनाया, कारागार है, बल्कि कारागार बना किससे, किस वस्तु से? राजा के राज्य से ही मिट्टी पत्थर लोहा वगैरह सब आया है, उससे कारागार बना है। ना क्या कारागार का रचना कारागार की का पहले क्या कारागार था, या तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत से ही भौतिक जगत, मतलब भौतिक जगत का सृष्टि का कारण भी आध्यात्मिक है।
जब नलको और मणिग्री पेड़ थे तो उस समय मतलब इतने साल, तो उस समय क्या उनका तब भी कुछ उनका चेतना कुछ इवोल्यूशन हो रहा था जी? तो जब नारद मुनि ने शाप दिया तो उस समय तो बहुत लो लेवल के कॉन्शियसनेस में थे, लेकिन भगवान जब उनको उधार के तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो इस बीच समय में तो 10,000 साल वो पेड़ में थे, तो क्या उनका चेतना का कुछ इवोल्यूशन हो रहा था?
जरूर होगा क्योंकि जब सजा मिल रहा है ऐसा तो सोचते रहे क्यों हुआ है ऐसा सजा, तो इसके कारण उसका मन का मन भाव का परिवर्तन होने वाला। मैं कौन हूं, मैं क्या था, देखो अब मेरा हालत कैसा।
इस दुनिया में जो भी कितने भी अच्छा व्यक्ति हो, जो भगवान का भक्त नहीं, कितने भी पुण्यवान हो, उसको नरक में कुछ समय के लिए तो कम से कम जाना ही पड़ेगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी जाना पड़ा, मतलब कितने भी पुण्यवान को जाना पड़ेगा, तो ऐसा संभव नहीं है कि कभी मतलब कोई व्यक्ति अच्छा होकर कभी नरक जा नहीं जाना।
हाँ, जैसे ध्रुव महाराज के अगर नरक जाना पड़े तो वैकुंठ से उनके लिए रथ आ गया। और युधिष्ठिर महाराज के ये जो वर्णन है ये हमको समझना होगा कि अगर युधिष्ठिर महाराज नरक जाते तो क्यों गए थे वहाँ, नरकवासियों को अपने दर्शन देकर उद्धार करने की, नरकवासियों को भी उद्धार करने की उद्धार हो जाते, जैसे यह वर्णन हुआ है। ऐसे साधु पुरुष नारद मुनि जैसे साधु पुरुष का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, अगर दर्शन होता है तो दर्शन से मुक्त हो जाते हैं सही रूप से अगर दर्शन। तो नारद मुनि का स्थिति और युधिष्ठिर महाराज की स्थिति एक ही बराबर है। युधिष्ठिर महाराज भगवान के पार्षद हैं, नारद मुनि भी भगवान के पार्षद हैं। इन लोगों को लिए जैसे राजा का जो, अगर राजा का राजकुमार वो अगर कारागार में गए वो क्या राज कैदी बन जाएगा? जैसे राजा भी कैदी नहीं बनते हैं, राजकुमार भी वैसे कैदी, बल्कि राजकुमार अगर राजा का विरोधी हो गया तब शायद उसको कारागार में जाना पड़ेगा। जैसे जीव यद्यपि वो भगवान के पुत्र है, भगवान के औलाद है, फिर उसके भगवान के विरोधी बनने के कारण इस भौतिक जगत रूप कारागार में उसका सजा मिल रहा है, बल्कि जब मनभाव का परिवर्तन हो जाएगा तो अपना स्थिति में वापस आ जाएंगे।
जैसे भक्त तीन बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों को फिर गोकुल से के स्वर्ग जा रहा है, उधर कैसे हो रहा है? इसको तो पता नहीं।
हाँ, कैसे?
जब गोकुल में भगवान नीला विलास कर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं उधर कैसे, इसको तो पता नहीं।
हाँ, कृष्ण ने बोल रहे हैं कि इस जन्म के बाद तुम आध्यात्मिक जगत में वापस जाओगे, अब तुम जाओ अपने पिता के, मतलब इस जन्म तक रहेंगे, बल्कि चूंकि उनका मनोभाव का परिवर्तन हो गया, स्वर्गलोक में जाकर भी उन्होंने क्या करेंगे, भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि जो इसको प्रेम भक्ति का स्वाद मिला है, भगवत भक्ति का स्वाद मिला है, वो क्या कभी उस साध को त्याग कर सकता है, चाहे वो नरक में हो या स्वर्ग में हो। उसका पतन ये नहीं, उनका उद्धार हुआ है, बल्कि कुछ समय के लिए और उनको वहां तक रहना चाहिए। उद्धव को भी एकदम बिल्कुल बराबर भगवत धाम में नहीं गए, उद्धव को बद्रिकाश्रम में कृष्ण के लीला समापन करने के पश्चात उद्धव कहाँ गया था? बद्रिकाश्रम में। Okay.
जैसे मैं बताया था कि भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, वो सारा मतलब इंद्रियों में और मन में कैसे होगा भगवान को पता होगा, इंद्रियों और मन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान फिर मतलब केवल शुद्ध भक्त को ही हेल्प करते हैं, जिनका मन खराब है उनको थोड़ा हेल्प नहीं करते।
जिसका मन खराब है उसको भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरा हाल कैसा है, आप तो जानते हैं, और उसको तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, तो मैं आपके पास विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ही हमको सुधार लीजिए और आपका दास बनने का यज्ञ बनाइए। कलयुग को 5000 वर्ष बीत गए, भगवान क्या क्या है 5000,
भगवान कृष्ण का जन्म भी 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा कलयुग का आगमन भी 5000 वर्ष ही
था। भगवान का आगमन द्वापर का अंत में हुआ था, द्वापर का लास्ट फेज में, और जब भगवान अपने लीला को संवरण कर लिया, समाप्त किया करके भगवान जब चले गए थे तब से कलयुग का शुरू हुआ। भगवान जब चले गए तब पांडवों ने महाप्रस्थान में चले गए, परीक्षित महाराज को राज सिंहासन में बैठा के, जब से परीक्षित महाराज सिंहासन में आरूढ़ हुए थे, आरोहण किए थे, तब से कलयुग का शुरू हुआ। हाँ 5200 साल। यस पारू,
अभी जब पूर्णा वाला अध्याय हमने पढ़ा था तो पता चला कि पूर्णा को भी आध्यात्मिक जगत में स्थान मिला था, मतलब गोलोक वृंदावन। तो जैसे पूर्णा तो सिर्फ एक आई, असल में तो वो भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन वो सिर्फ माँ के रूप में आई थी, भगवान ने उसको ये स्थान दिया। और बहुत से भक्त कई जन्मों तक प्रेम भक्ति करते हैं भगवान से वो स्थान प्राप्त करने के लिए, तो दोनों में अंदर क्या, क्योंकि वो भक्त तो सिर्फ प्रेम ही कर रहे भगवान से, फिर भी उनको भी कोई स्थान मिल रहा है जो पूतना को मिला।
पूतना यद्यपि भगवान को मारने के लिए आई थी, बल्कि ये समझना होगा कि भगवान के कृपा से उसको सारे गलत फहमी मिट गया था और उसका मन में भगवान के प्रति ऐसी भावना आई जिसके कारण उसको माता की पद प्राप्त हुई। ये जो परिवर्तन जो होता है वो पल भर में हो सकता है ना, जैसे जब तुम नींद में हो और सपना देख रहे हो, और जब नींद टूट जाता है तो सपना और जागृत अवस्था में अंतर कितना है, बस ये पल भर में, पल भर का अंतर है। इस एक पल पहले सोए हुए थे और एक पल बाद जाग उठे, तो वैसा ही हमारा चेतना का भी परिवर्तन पल भर में हो सकता है। जो एक राक्षसी हैं, इतने इतने पापी हैं, इतनी पापी हैं कि भगवान को हत्या करने के लिए आए, ऐसी भावना नहीं था, बल्कि जब भगवान के द्वारा उसके प्राण का अंत हुआ तब चेतना का भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो और ऐसे भक्त भगवान को सेवा करते रहेंगे, भगवान भक्त तो नहीं चाहते हैं कि हमको गोलक में ले चलो, हमको ऐसा पद दिला दो, भक्त क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो, भगवान का सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है तो और कहीं जाने का जरूरत है, तो यहाँ पर ही तो सब कुछ मिल रहा है, तो इस स्थिति ही तो सही है, है ना। भक्त का ऐसा ही विचार रहता है कि मैं जो सेवा जो कर रहा हूं वो तो अच्छा है, अगर भगवान और कहीं कब भेजेंगे तो वो उनका मर्जी है, मेरा तो चाहना कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जहां हूं वहां मैं बिल्कुल सही भाव से रहा हूं, बिल्कुल आनंद में हूं, मस्ती में हूं। यस अंशु, क्या नाम है?
फरजाद।
ओके। कृष्ण का बाल लीला ऑर्डिनरी। अच्छा, एक बाल को दिखाओ जो 7 साल का बालक होते हुए एक पर्वत अपना हाथ पर उठा लिया। एक बाल ऐसे दिखाओ, एक बालक को दिखाओ जो 7 दिन के समय में एक राक्षसी को उसका स्तनपान करके हत्या कर दिया, संहार कर दिया। एक बाल को दिखाओ जो एक अघासुर रूपी एक विशाल सर्प के मुंह पर जाकर जो सारे ग्वाल बालों को खा लिया था, उसको मुंह में जाकर बस उसको उसका नाश कर दिया। तो ऐसे कोई बाल हैं? तो फरजाद तुम्हारा क्या विचार है? बल्कि भगवान का बाल लीला का एक ये ऐसी स्वभाव है, ऐसी ये है कि वो बहुत मधुर होता है। भगवान के बाल लीला हमारे मन में भगवान के प्रति जो आकर्षण वो बहुत सुंदर रूप से बढ़ाता है, क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो बहुत ही सुंदर होता है, वो मोहक होता है, बालक के प्रति सब प्यार करते हैं, है ना। वैसे तब आप देखो भगवान अगर ऐसे करते हैं तो उसमें कितना आनंद होता है, उस लीला को, उस लीला में कितना आनंद है, कितना। साधारण मनुष्य का बाल अवस्था इतना सुंदर है, इतना मोहक है, तो भगवान की बाल अवस्था कितना मोहक था। बल्कि सही भाव लेके उस लीला में मन जोग या प्रवेश करना होगा।
गुरु महाराज, फॉर मी व्हाई पीपल गेट टू क्राई ऑल्दो द पर्सन हु डार इज अ सेंट और अ कर्मी पीपल, हाउ कैन वी कम सो फार नॉट टू क्राई।
देखो, हृदय में जो कोमलता जो है, हृदय भक्तों का जितना आगे बढ़ते रहेंगे उसका हृदय भी उतना कोमल होगा, उतना नरम होगा, और उसमें जो अनुभूति इमोशंस उतना ही प्रबल होगा। तो जो अपने पास हैं, नज़दीक हैं, उनका अगर देहांत हुआ तो ज़रूर उसके लिए मन में शोक होगा, ताप होगा, और उस ताप के कारण, शोक के कारण आंसू आएंगे, रोने लगेंगे। ऐसा नहीं कि जो भक्त हैं उनका हृदय एकदम कठोर हो जाता है। कठोर होता है जब स्थिति परिस्थिति आता है, वैसा वो कठोर होता है। भक्त का हृदय कैसा होता है? कुसुमादोपी कोमल और वज्रादोपी कठोर, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठिन, ये है भक्तों की मनोभाव। तो इसके कारण भक्त कभी जब कोमल भावना जब आता है तो रोते हैं। ठीक है, जयनंद का प्रश्न था, जयंत राम। ओके, हरे कृष्ण जयंत राम, कैसे हो तुम? हरे कृष्ण। ये जवाब ठीक है, मन पसंद हुआ है? ओ इज इट, एनीवे सी इफ ही रिप्लाइज। ओके गुड। यस कृष्णार्चन, लास्ट क्वेश्चन।
द्रोणाभरा अपने द्रोण जन्म वसु था और यक्षों का राज था कुबेर, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वसु कौन होते हैं और यक्ष कौन होते हैं।
वसु है देवताओं में से एक, जो स्वर्गलोक के जो प्रधान प्रधान देवताएं हैं उनमें से है द्वादश आदित्य, बारह आदित्य, अष्ट वसु, आठ वसु, ऐसे उनका स्थिति है। तो ये वसुओं में से द्रोण एक थे जो भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त होने को चाहा। अच्छा, और यक्ष एक प्रकार के जीव है, प्राणी है, उनका प्रधान है कुबेर जो विश्रवा ऋषि का पुत्र था। इस विचार से यक्ष ये कुबेर राम रावण का क्या बोलता है सौतेला भाई था, सगा नहीं, सगा भाई नहीं, सौतेला भाई था, माँ दूसरा था, दूसरी थी।
मतलब एक तरह के राक्षस होते
हैं, यक्ष ठीक राक्षस नहीं है, यक्ष एक प्रकार के ये है राक्षस, नरखादक होता है, मनुष्य को खाता है, बल्कि यक्ष मनुष्य को नहीं खाता, बल्कि वो सारे धन को संभालता है, रक्षा करता है। तो देवताओं का सारे जो धन दौलत है उसको रक्षक है कुबेर, ही इज द ट्रेजरर ऑफ द डेमिगॉड्स। बहुत अच्छा अकाउंटेंट होता है, एकदम सही हिसाब रखते हैं वो लोग, कोई हेर फेर नहीं होता उनका। थैंक यू। ओके ओके, वो एक ब्रह्म जो है, ब्रह्म ये है भगवान का शरीर का कांति, ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्मा है इस ब्रह्मांड के पहला श्रेष्ठ जीव जो सबसे पहले भगवान के नाभि से इसका एक है ब्रह्म और एक है ब्रह्मा। वन इज शॉर्ट ए, एंड्स विद अ शॉर्ट ए, एंड द अदर इज एंडिंग विद अ लॉन्ग ए। व्हेन इट इज लॉन्ग ए इट्स ए ब्रह्मा जी, और ब्रह्म है ज्योति, ब्रह्म ज्योति।
जैसे शक्ति को मान लिया और एंड सब कर दिया, इसके बाद में फिर और ज्यादा गहराई में जानने का आवश्यकता है क्या
शक्ति को?
जैसे
तो शक्तिमान का क्या हो?
शक्तिमान को पहचान लिया
कैसे?
नहीं, हमने मान लिया कि भगवान हम शक्तिमान है और हम शरण हो गए।
हाँ हाँ, अच्छा, तो शक्ति से नहीं, शक्तिमान मतलब भगवान से
जी।
हाँ,
तो भगवान को जान लिया और एंड्स को करके और
हम समर्पण कर दिया।
हाँ,
नहीं नहीं, भगवान के पास समर्पण करने से दो मतलब भक्ति के साथ साथ दो वस्तु रहता है, भक्ति माता है और माता के साथ दो पुत्र रहती है, रहता है, और दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान जो है वो ऐसे ही आ जाता है भक्ति के साथ, और त्याग भी ऐसे ही आ जाता है। जब भक्ति होता है तो ज्ञान और त्याग दोनों ही साथ साथ में उसका प्राप्ति होता है। और जैसे सूरज का किरण, सूरज का जब उदय होता है तब सब कुछ हम देखते हैं, तब तो उसको किताब पढ़ के जानने का जरूरत नहीं होता है, ये पेड़ है इसका ये हम खुद देखते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवत भक्ति के प्रकाश होने से, भगवत भक्ति से जोड़ने से ऐसे ज्ञान का सब कुछ के बारे में ऐसे ही उपलब्धि हो जाता है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, जाना ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। हाँ, बस सरेंडर, बस और कुछ करने का नहीं है। प्रभु जी मैं हूं दास तुम्हारा, बस दास बन जाओ और बाकी सब ऐसे ही होता रहे। देखें देखना कुछ, बल्कि तब फिर भी कुछ पढ़ाई करना चाहिए प्रभुपाद का पाठ करना चाहिए, क्योंकि पाठ करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है पाठ करने से भक्ति बढ़ेगा, बल्कि पाठ करने से हम जो आगे बढ़ रहे हैं इसका उपलब्धि होता रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। द बुक्स आर लाइक माइलस्टोन। हम उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं, एक माइल, एक मील, दो मील का ओ ये होता है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं माइलस्टोन्स के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, माइलस्टोन केवल हमें इंडिकेट दे रहे हैं कहाँ तक हम गए, उज्जैन और कितनी दूर है और इंदौर कितनी दूर है। हाँ, पढ़ना जरूर है। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे, हरे
जय परम पुत्र कृष्ण।